समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, शाम के 4:30 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं एक बार फिर लेकर न्यूज मैगजीन प्रोग्राम परिक्रमा। कार्यक्रम में होंगे अब तक के मुख्य समाचार, साथ ही चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों और आर्थिक जगत पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं आकर्षिता सिंह और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय।
हेलो एंड गुड आफ्टरनून आकर्षिता, यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा 100.1 FM। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज माय को-होस्ट आकर्षिता, एंड फॉर यू विद अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज अ डिस्कशन सेगमेंट डेटलाइन इंडिया रिपोर्ट्स कैप्सूल्स बिजनेस ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दीज ऑफ द नेक्स्ट 30 मिनट्स वी बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट। प्राइम मिनिस्टर ऑफ जमैका डॉ एंड्रू होलनेस अराइव्स ऑन अ 4-day विजिट टू इंडिया to hold delegational talks with Prime Minister Narendra Modi tomorrow।
CBI ने ऑपरेशन चक्र 3 के अंतर्गत संगठित साइबर अपराध नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया, 26 लोगों की गिरफ्तारी।
लेजेंडरी एक्टर मिथुन चक्रवर्ती टू बी ऑनर्ड विद दादा साहेब फाल्के अवार्ड।
बिहार में कोसी और गंडक नदी के तटबंध टूटने से बाढ़ का पानी कई नए क्षेत्रों में घुसा, राहत अभियान तेज करने के लिए एनडीआरएफ की 6 अतिरिक्त टीमें तैनात।
And now, Akarshita, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about the International Translation Day, 30th September. Well, Anthony Burgess very famously said, translation is not a matter of words only, it is a matter of making intelligible a whole culture. Yes, and this day is meant as an opportunity to pay tribute to the work of language professionals, which plays an important role in bringing nations together, facilitating dialogue, understanding and cooperation, contributing to development and strengthening world peace and security.
जी हाँ, अनुवाद के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के योगदान को मान्यता देने और इसके महत्व को उजागर करने के मकसद से हर साल 30 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया जाता है। अनुवाद के माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों और भाषाओं के बीच एक पुल बनाना आसान हो जाता है, जो कि किसी भी समाज के लिए बेहद जरूरी है। पानी का अनुवाद करने पर उतारू बेसब्रों से कोई कैसे कहे कि पानी का अनुवाद तब तक नहीं हो सकता जब तक प्यास का अनुवाद न हो जाए। तो यूं कहें अभिषेक कि जब तक उस चीज की अनुभूति न हो, अनुभव न हो, तब तक अनुवाद करना मुश्किल है। अनुवाद सिर्फ शब्दों से खेलना ही नहीं बल्कि एक दूसरी भाषा में शब्दार्थों से परे उस चीज को प्रकट करना है और ऐसे अर्थ को प्रकट करना है जो सरस और हृदयग्राही भी हो, जिसे पढ़ते समय हम अपनी भावनाएं भी महसूस कर सकें, वो महज अर्थ न हो बल्कि किसी की अनुभूति भी हो उसमें। जरा सोचिए, अगर अनुवाद नहीं होता तो हम कैसे अलग अलग देशों के लोगों के विचारों और संस्कृतियों को समझ पाते?
एवरीथिंग वुड हैव बीन लॉस्ट इन ट्रांसलेशन,
राइट? और आज कोई भी किसी भी भाषा में लिखी गई किताब को पढ़ सकता है, किसी भी भाषा में निर्मित की गई फिल्म को समझ सकता है। और अभिषेक, आजकल हम देखते हैं कि जो डिफरेंट लैंग्वेजेस की स्पेनिश की जो मूवीज हैं, बहुत ही सारी हम देखते हैं कि जो मूवी लवर्स हैं उनके लिए कितना आसान कर दिया अनुवाद के क्षेत्र में कि वो किसी भी मतलब अपनी भाषा में कोई भी फिल्म देख सकते हैं और किसी भी भाषा में जो है किसी भी भाषा की अनुवाद की गई अपनी भाषा में पुस्तकें पढ़ सकते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो अनुवाद एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है हमारे और दूसरी संस्कृतियों के मध्य। किस तरीके से एक देश जो है वो दूसरे देश की संस्कृति, सभ्यता, खान पान को आसानी से समझ सकता है जब उसकी भाषा में अनुवाद हो जाता है।
इट प्रमोट्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग,
राइट?
एंड लेट्स ऑल्सो टॉक अबाउट द थीम ऑफ द इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे 2024। Well, the theme for International Translation Day 2024 is Translation and Art Worth Protecting, Moral and Material Rights for Indigenous Languages. And this theme will focus on the significance of safeguarding indigenous languages and their translations. It will discuss ethical concerns related to data collection, copyright and the use of translated works. So, Akarshita, I think that It has improved our understanding of different cultures, different societies, and that is what translation basically does. It helps us understand each other better.
राइट और इसका उद्देश्य भाषा विशेषज्ञों की कड़ी मेहनत का सम्मान करना है जो साहित्य के माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों के बीच अंतर को पाटने का काम करते हैं क्योंकि उनका अनुवाद विविध साहित्यिक कार्यों के लिए वैश्विक समझ और सराहना को बढ़ावा देने में मदद करता है। और अभिषेक अगर बात करें कि हम अगर देखें कि किसी भी क्षेत्र में चाहे वो न्यूज हो स्पोर्ट्स हो लिटरेचर हो या फिर फिल्म्स हो हर जगह जो अनुवाद है उसने हमारी चीजों को कितना आसान बनाया है और भारत जैसे विविधता वाले देश में भी जहां पे विभिन्न बोलियां हैं विभिन्न भाषाएं हैं किस तरीके से हम तमिल कन्नड़ तेलुगु का आदि भाषाओं में अनुवाद करते हैं किस तरीके से उनको समझते हैं। और अगर अभी देखा जाए तो सरकार की भी कई गतिविधियां हैं जैसे सरकार ने की जो नई गतिविधियां उनके अनुसार जो बच्चे हैं उनको उनकी मातृभाषा में ही शिक्षा देने की जो बात है तो वो भी अनुवाद के जरिए ही संभव हो सका है। अगर अनुवाद न होता तो हम कभी भी किसी भी बच्चे को उसकी मातृभाषा में शिक्षित नहीं कर सकते थे।
अगर्षिता, यू मस्ट हैव यूज्ड द इंटरनेट टू ट्रांसलेट अ लॉट ऑफ टेक्स्ट, बट डू यू नो व्हाट इज ट्रांसलेशन? इन अदर वर्ड्स, इट इज अ लिटिल नोन वर्ल्ड हार्डली लिमिटेड टू इट्स लिटरेरी डायमेंशन। Translation is a tool for promoting languages, a discrete part in the economy, and a vehicle for ideas, but it is also a domain in transformation, shaken up by the advances of artificial intelligence, and perhaps above all, it is a means for each civilization to access the other. And Akarshita, just the other day I was reading somewhere that now in the field of where we are talking about dubbing artists and voiceover artists in movies and other the art form. Now, with the help of artificial intelligence, we can dub the actor's voice in different languages, in the actor's voice. We don't need different actors to dub. In the same actor's voice, you can have, for instance, Prime Minister's Mann Ki Baat. Mm-hmm. In the Prime Minister's voice, you can have the same speech in Kannada, Tamil, Telugu, Kashmiri, whichever language with the help of artificial intelligence. Now, isn't that marvelous?
Right. और अभिषेक, वो किताब आपने पढ़ी हुई होगी डेल कार्नेगी की, How to Win Family and Friends.
Not family, how to win friends and influence people.
Yeah. तो वो जो किताब है वो एक बार मैंने देखा था कि शायद वो इतनी भाषाओं में ट्रांसलेट हुई है, मेरे सेल्फ पे ही वो मुझे लगता है कि 4-5 भाषाओं में पढ़ी है। तो आप देख सकते हैं कि हम सभी अनगिनत किताबें पढ़ी हैं जो मूल रूप से उस भाषा में नहीं थी जिसे हम पढ़ रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि साहित्यिक अनुवादों को मूल पाठ के सार और बारीकियों से एक अलग भाषा में सटीक रूप से व्यक्त करने में कितना समय लगता है। आप जानते हैं कि एक बुक जो एक किताब होती है उसको ट्रांसलेट करने में हमारे ट्रांसलेटर्स कितनी मदद करते हैं, कितनी मशक्कत करते हैं। तो आज का दिन उनके ही नाम है उनको सेलिब्रेट करने का कि उन्होंने हमारे लिए चीजें कितनी आसान कर दी हैं। और जब हम कोई भी चीज अपनी भाषा में पढ़ते हैं अभिषेक, तो उसका कुछ अलग ही महत्व होता है।
Absolutely. On May 24, 2017, the General Assembly adopted a resolution on the role of language professionals in connecting nations and fostering peace, understanding and development, and declared 30 September as International Translation Day. And now some very interesting trivia, Akarshita. Why 30th September? Why this day is celebrated as a translation day? Because this day celebrates the feast of Saint Jerome, the Bible translator, who is considered the patron saint of translators. Jerome died near Bethlehem on 30th September 420. Saint Jerome, a priest from northeastern Italy, is known mostly for his endeavor of translating most of the Bible into Latin from the Greek manuscripts of the New Testament. He was a notable scholar responsible for translating the Bible into Latin, thus making it more accessible to a wider audience. And there's a growing awareness that languages play a vital role in development, in ensuring cultural diversity and intercultural dialogue, but also maintaining quality education for all and strengthening cooperation in building inclusive knowledge societies and preserving cultural heritage, and in mobilizing political will for applying the benefits of science and technology to sustainable development.
भाषाएं पहचान संचार सामाजिक एकीकरण शिक्षा और विकास के लिए अपने जटिल निहितार्थों के साथ लोगों और ग्रह के अपने रणनीतिक महत्व की भी बात करती हैं, जैसे कि अनुवाद मध्यस्थता के लिए और राष्ट्रीय या अन्य भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए एक आवश्यक उपकरण है। अनुवाद संस्कृति के लिए सबसे पहली आवश्यकता है। लोगों के बीच सामंजस्यपूर्ण संचार में एक आवश्यक कारक। बहुभाषावाद को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संगठन के मूल्य के रूप में जाना जाता है और सहिष्णुता को बढ़ावा देकर बहुभाषावाद संगठन के काम में भी सभी की प्रभावी और बढ़ी हुई भागीदारी सुनिश्चित करता है। और अभिषेक, हम देखते हैं कि जब भी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो यूएस ट्रिप पे या फिर किसी और देश में गए हैं, फ्रांस में गए हैं, तो वो अपनी भाषा में बोलते हैं। और कितनी अच्छे से हम देखते हैं कि दोनों जो हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और जो दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो दोनों अपनी अपनी भाषाओं में बात करते हैं और एक ट्रांसलेटर होता है जो उनको ट्रांसलेट करता है। तो ये कितनी अच्छी बात है कि कोई भी इंसान अपनी भाषा में अपनी बात को कह पा रहा है थ्रू ट्रांसलेशन।
सो एंड हियर आई लाइक टू ऐड दैट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इन अ फ्यू इयर्स सब्सक्रिप्शन बेस्ड स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैव रेवोल्यूशनाइज्ड क्रॉस बॉर्डर व्यूअरशिप ऑफ फॉरेन लैंग्वेज फिल्म्स एंड टेलीविजन शोज विद लोकलाइज्ड इंटरनेशनल कॉन्टेंट गेनिंग अनप्रेसिडेंटेड पॉपुलैरिटी अमंग इंग्लिश लैंग्वेज ऑडियंसेस एंड द इंटेंशन ऑफ द ऑथर एंड द पर्पस ऑफ अ टेक्स्ट cannot be encoded into a machine translation system. Its output will remove lexical richness, defaulting to the most common words from the training data. And for creative text in particular, any trace of the author's voice will be lost unless automation one day develops to the point of posing a threat to this more creative part of the job. An author's intention cannot be encoded into a machine translation. So, to end, I'd like to leave you all with a very famous words by Anna Rasconi, who said, "Words travel worlds, translators do the driving."
और मैं भी एक कोट से इसका अंत करना चाहूंगी कि लेखक राष्ट्रीय साहित्य बनाते हैं जबकि अनुवादक सार्वभौमिक साहित्य बनाते हैं।
Yes, translation isn't just about words, it's about connecting people, cultures and ideas from all corners of the world. So today we honor the translators who make this possible. Today we are celebrating the power of language and the people behind it.
और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। विश्व अनुवाद दिवस के अवसर पर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू में एक वक्तव्य का आयोजन किया गया, जिसका विषय सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण में अनुवाद की भूमिका था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारतीय भाषा केंद्र जेएनयू के अनुवाद केंद्र के प्रोफेसर गंगा सहाय मीना ने कहा कि अनुवाद भाषा, संस्कृति और समाज के बीच का सेतु है। इस अवसर पर सुनिए हमारे दिल्ली संवाददाता की ये रिपोर्ट।
इस कार्यक्रम में छात्रों को अनुवाद की भूमिका और महत्व के बारे में बताया गया। अनुवाद के माध्यम से आज विश्वभर में सदियों पुराना साहित्य पढ़ पाना संभव हो पाया है। लोग एक दूसरे की भाषा, संस्कृति और धरोहर को जान पाए हैं। अनुवाद अध्ययन में पीएचडी के छात्र विकास ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि सरकार लगातार अनुवाद के महत्व को स्वीकार करती है और इसका बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन कर रही है।
ट्रांसलेशन डे यूनेस्को के द्वारा एक डेट हम लोग को दी गई जिससे हम ट्रांसलेशन के इम्पोर्टेंस को समझ सकें और उन्होंने इसके लिए संत जेरोम की पुण्यतिथि को चुना। संत जेरोम बहुत बड़े बाइबल के अनुवादक थे जिन्होंने पहली बार उसको हिब्रू से और लैटिन और दूसरी भाषाओं में उसको ट्रांसलेशन करके लोगों तक पहुंचाया। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी माटी पत्रिका जो कि ई मैगजीन है उसके साथ मिल करके हमने एक विशेषांक तैयार किया अनुवाद का विशेषांक।
पीएचडी के एक अन्य छात्र कमलकांत ने बताया कि भाषा के साथ उसके भाव और संस्कृति भी होती है, इसलिए अनुवाद का उचित होना आवश्यक है।
अनुवाद अगर न होता किसी भी चीज का तो हम इस जीवन में बहुत सारी चीजों से वंचित रह जाते हैं। जैसे एक भाषा, भाषा के साथ केवल भाषा ही नहीं आती है, उसकी पूरी संस्कृति चली जाती है उसके साथ।
इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, शिक्षाविद और छात्रों ने हिस्सा लिया। परिक्रमा के लिए अभिषेक कपिल की रिपोर्ट के साथ प्रिया मॉडल।
The launch of the Quest series kicks off today with the inaugural session focused on business and entrepreneurship at Manan Kendra Mini Hall, Gangtok, spearheaded by Lok Sabha MP Indira Hang Subha. The Quest is a platform aimed at empowering the youth and students of Sikkim through inspirational talks by industry leaders, supported by Prostitute and collaboration with the Press Club of Sikkim.
Speaking at a media briefing In the Hangzhou by emphasized the initiative's goals to connect the younger generation with achievers and leaders across various sectors, fostering confidence and guiding them towards their desired career. Each monthly event will feature keynote speech from experts in fields like business, technology and more, concluding with a question and answer session for direct interaction. Today's session features startup expert Dr. Tej, catering entrepreneur Nima Lama and businessman Guru Chiring Ladaki, who will share their personal stories and insight on entrepreneurship. Subha highlight the importance of this engagement in aligning with the Sunawa Sikkim, Samruddhi Sikkim, Samartha Sikkim, Vision Champion Boy, Chief Minister Prince Tamang Gole, also tying the series to the 50th Sikkim Statehood Day celebration. Bhim Rawat, President of Press Club of Sikkim, expressed his support, stressing the series' role in providing valuable knowledge and direction to Sikkim's youth. Dili Randulal, Akashwani News, Gangtok for Parikrama.
उत्तराखंड प्रकृति की गोद में बसा हुआ एक ऐसा पर्वतीय राज्य है जो पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है और पर्यटन की अपार संभावनाओं को समेटे हुए है। उत्तराखंड राज्य आध्यात्मिक, प्राकृतिक और साहसिक पर्यटन का केंद्र बनकर उभर रहा है। राज्य में पर्यटन के अनेक स्थल मौजूद हैं और विभिन्न स्थानों को पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित करने के लिए राज्य सरकार धरातल स्तर पर काम कर रही है। पर्यटन के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के चलते ही उत्तराखंड के चार गांव जखोल, सूपी, हर्षिल और गुंजी को राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड के पर्यटन गांव की और अधिक जानकारी के लिए आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के पास।
इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता में उत्तरकाशी जिले के जखोल गांव को साहसिक पर्यटन के लिए चुना गया, जो अपनी ऊंचाई, खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों और चुनौतीपूर्ण ट्रैकिंग मार्गों के लिए जाना जाता है। साहसिक गतिविधियों के शौकीनों के बीच यह गांव तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। उत्तरकाशी जिले के हर्षिल गांव और पिथौरागढ़ जिले के गुंजी गांव को वाइब्रेंट विलेज के रूप में सम्मानित किया गया। हर्षिल अपनी प्राकृतिक सुंदरता, बर्फ से ढके पहाड़ों और सेब के बागानों के लिए प्रसिद्ध है, जबकि पिथौरागढ़ जिले का गुंजी गांव यह चीन और नेपाल सीमा के निकट स्थित है, अपनी सामरिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण विशेष स्थान रखता है। वहीं बागेश्वर जिले के सूपी गांव को कृषि पर्यटन के लिए पुरस्कृत किया गया। सूपी गांव अपनी पारंपरिक कृषि पद्धतियों और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाना जाता है। कृषि पर्यटन को बढ़ावा देने के तहत यहां पर्यटकों को ग्रामीण जीवन और खेती से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सशक्त किया जा सके। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी देहरादून से संजीव सुंदरियाल।
Planasys Technologies that deploys robots and drones underwater. It was founded in 2015 by IITM batchmates. Jhunjhunwala, CEO of the startup, said that the focus is on developing underwater robotic systems which are both remotely operated and autonomous. It is basically a drone platform or underwater robotics platform whose capabilities are defined by tests undertaken. We have a report from a Chennai correspondent.
This platform is unique and has a structural integrity testing of high-value assets such as bridges, dams, ports, processing industry, refinery assets and whatever is underwater. They also check the health of it so that decision makers can take a call on repair and maintenance. Prior to the use of robots and drones, the industry mostly used divers. Planasys is the next big opportunity in India's defense sector. Underwater drones for defense are a niche field and it has pursued it with the defense ministry. They also worked in oil and gas offshore sites and refineries. They also have projects in international realm. Joy, Akashwani reporting for Parikrama from Chennai.
And now we will take on a tour of Indus Freedom Struggle and recall events that happened on this day.
The present Nuwapara district of Odisha comprises the area of erstwhile Khariar Estate, had always been active in the struggle for independence from the British. In 1930, people of Khariar Estate united and protested against taxation on tenants during the civil disobedience movement.
In 1826, when the Khariar estate was ceded to the British, Veer Surendra Sai of Sambalpur region fought to oust the Britishers from the motherland. the British gave warning to the people of Khariar to stop supporting Surendra Sai. But the people did not pay heed and supported Surendra Sai in his fight against the British.
People of Khariar region participated actively in the civil disobedience movement of 1930. It was on this day, in 1930, that the people of Khariar state organized a meeting at Salihagar village. More than 700 people assembled. Their ambition was one. A resolution was passed in the meeting not to give taxes and to revolt against imposition of taxes. This incident is popularly known in the history as Saliha agitation.
To suppress the incident, the police rushed to Saliha while the meeting was in progress. Police encircled the campaigners all of a sudden, lathi charged, and opened fire on innocent people. Leaders like K.J. Das Baba, Ramlal Deongan, Gaura Rai of Saliha and nearby villages were arrested and were taken to prison. Some died on the spot, and many more were wounded.
Also, when Gandhiji was arrested after the launch of the Quit India movement, a number of meetings were held in Khariar to demand the release of Gandhiji. The Quit India movement in Khariar was intense, and there was a widespread protest against the British Raj.
And in business news today, domestic benchmark indices Sensex and Nifty ended in negative territory amid mixed global cues weighed down by frontline stocks. At close, the Sensex declined 1,272 points at 84,299, while the Nifty slid 368 points to settle at 25,810. Both the indices fell over 1.4%. And now for some sports news. And in shooting, the Indian pair of Gautam Bhanat and Ajay Malik clinched bronze after defeating Croatia 17-9 in the air rifle mixed event in the ISSF Junior World Championship in Peru yesterday. In air pistol mixed event, India's Lakshita and Pramod defeated Kanisha Dagar and Mukesh Lalavani 16-8 to win another bronze in the tally. And in cricket, India declared the first innings against Bangladesh at 285-9, taking a lead of 52 runs on the fourth day of the second test match at Green Park Stadium in Kanpur.
और अब समय है उन व्यक्तियों को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्मदिवस. आज पत्रकारिता जगत के एक पुरोगामी व्यक्तित्व रामानंद चटर्जी की पुण्यतिथि है. वे कोलकाता से प्रकाशित पत्रिका मॉडर्न रिव्यू के संस्थापक और संपादक थे. उन्हें भारतीय पत्रकारिता का जनक माना जाता है. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्होंने विशेष रूप से कार्य किया. उन्होंने प्रवासी, बांग्ला भाषा और विशाल भारत जैसी पत्रिकाएं निकाली. और आज ऋषिकेश मुखर्जी की जयंती है. वे हिंदी फिल्मों में एक ऐसे फिल्मकार के रूप में विख्यात हैं जिन्होंने बेहद मामूली विषयों पर संजीदा फिल्में बनाने के बावजूद मनोरंजन पक्ष को कभी अनदेखा नहीं किया. यही कारण है कि उनकी सत्यकाम, आशीर्वाद, चुपके चुपके और आनंद जैसी फिल्में आज भी बेहद पसंद की जाती हैं. ऋषिकेश मुखर्जी की अधिकतर फिल्मों को पारिवारिक फिल्मों के दायरे में रखा जाता है क्योंकि उन्होंने मानवीय संबंधों की बारीकियों को बखूबी से पेश किया है. उनकी फिल्मों में राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, शर्मिला टैगोर, जया भादुरी जैसे स्टार अभिनेता और अभिनेत्रियों ने भी अपना स्टारडम भूलकर पात्रों से बिल्कुल घुल मिल जाते थे. उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार, पद्म विभूषण और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया है. आइए सुनते हैं उनकी फिल्म का ये गीत.
Yes, and Rishikesh Mukherjee was renowned for his social films that reflected the changing middle-class ethos, and Mukherjee carved a middle path between the extravagance of mainstream cinema and the stark realism of art cinema. And popularly known as Rishida, he directed 42 films during his career spanning over four decades and is named the pioneer of the middle cinema of India. And also moving on, James Byron Dean passed away on this day in 1955. He was an American actor with a career that lasted 5 years. His roles typified the teenage disillusionment and social estrangement of his time. He had several uncredited roles from 1951 to 1953 before starring as a rebellious son attempting to win his father's approval in East of Eden, 1955. In Rebel Without a Cause, 1955, he portrayed a teenager struggling with his emotions and feeling frustrated with his family and social life. His last lead role was playing a Texan rancher who discovered oil and became rich in Giant, 1956. Dean died in a car crash in 1955 and became the first actor to receive a posthumous Academy Award nomination for Best Actor for his role in East of Eden. And in 1999, the American Film Institute granted the 18th Best Male Movie Star of the Golden Age Hollywood. Dean's film roles, fashion and manners became celebrated in popular culture and influenced the development of rock and roll in the 1950s and the 1960s.
आज पंडित श्रद्धाराम शर्मा की जयंती है। वे एक प्रसिद्ध ज्योतिषी थे, किंतु एक ज्योतिषी के रूप में उन्हें वो प्रसिद्धि नहीं मिली जो इनके द्वारा लिखी गई ओम जय जगदीश हरे आरती के कारण मिली। संपूर्ण भारत में पंडित श्रद्धाराम शर्मा द्वारा लिखित तो ओम जय जगदीश हरे की आरती गाई जाती है। श्रद्धाराम शर्मा जी ने इस आरती की रचना 1870 ईस्वी में की थी। आइए सुनते हैं उनका ये गीत।
जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर।
Yes, and Prasenji Chatterjee was born on this day in 1962. He is an Indian actor and producer. He is widely regarded as one of the leading actors of modern Bengali cinema. He predominantly works in Bengali cinema. He is the son of veteran Bollywood actor Biswajit Chatterjee. He began his acting career as a child actor in Hrishikesh Mukherjee's Chhotto Jigyasa, for which he won the Bengal Film Journalist Association's Most Outstanding Work of the Year award. His roles in Dosar, Shop, Choritro, Kalpanik, portraying the lead character of Arun Chatterjee in debutant Srijit Mukherjee's autograph, Mone Manush, and the character of Anthony Firangi in the National Film Awards winning film, Jatishwar, won awards and recognition. His role as a protagonist with Binu Roy's Duti Pata in 1983 and a teenage romance was along the lines of Bobby. He starred in Omar Shangi in 1987 opposite Vijayata Pandit. The song Chirodini Tumi Jamar from Omar Shangi became a cult hit. Let's listen to it. Yes, and Shantanu Mukherjee was born in this day in 1972. Professionally known as Shyam, he is an Indian playback singer, composer, actor and television host.
संगीत से रिश्ता इन्हें विरासत में मिला है। शाम ने साल 1999 में फिल्म प्यार में कभी कभी में बतौर पार्श्व गायक अपने करियर का आगाज किया और साल 2000 में उनके एल्बम तन्हा दिल का एक गाना तन्हा दिल तन्हा सफर काफी पसंद किया गया।
Yes, and his name is the Golden Voice of India, and Shyam has established himself as one of the leading singers of the 2000s with successful songs in various languages. Let's listen in to a medley of his hit songs.
तुम्हें है जब से चाहा हवा में उड़ता हूँ, तुम्हें मेरे हर पल में प्रमाण चले तुम कल में निशाना निशाना हवा का खबर उठी पतंग का खबर
कहा गया। is, and Truman Garcia Capote was born in this day, 1924. He was an American novelist, screenwriter, playwright, and actor. Several of his short stories, novels, and plays have been praised as literary classics, including the novella Breakfast at Tiffany's in 1958 and the true crime novel In Cold Blood, 1966. His works have been adapted into more than 20 films and television productions.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए आकर्षिता और अभिषेक को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की।
नमस्कार।